તારીખ 6/4/1991 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ, બોલ નંબર 425, 436, 439 અને 431 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 44.
પહેલે પીછે કી બાત નહીં હૈ, મેં પહેલા નહીં આ સર ચિંતન હો, લેકિન પહેલે કહેને સે તો ઉસ પર ઉજરા
કહેને વાળા હૈ. સાયકોલોજીકલ કોણ સે લેવલ પર ખડા હૈ?
વાસ્તવિકતા મેં ચિંતન પહેલે હોતા હૈ, પ્રશ્ન ઉઠાને વાળા કહાં ખડા હૈ, ઇસકા વજન કહાં જાતા હૈ, કિતની સૂક્ષ્મતા સે પકડતે હૈ. ચિંતન આદિ સે આગે બઢતા જાતા હૈ, એસા કહેને મેં આતા હૈ, ચૂંકિ પહેલે લક્ષ્ય યથાર્થ હો ગયા હૈ તો ઇસકા ચિંતન ચલતા હૈ. મેને લક્ષ્ય તો રખવાલા કી બાત હૈ, લેકિન ઇસકા મેને ચિંતન આદિ કા ભી નિષેધ કરતે કરતે આગે બઢતા હૈ. મને લક્ષ્ય વાળા જો હૈ ઉસકો ચિંતન સહેજ ચલતા હૈ, ઓર લક્ષ્ય કે કારણ સે વો આગે બઢતા હૈ. ઉસમે ચિંતન કા મેને રાગ કા નિષેધ હૈ, સ્પષ્ટીકરણ હૈ કે સ્વરૂપ લક્ષ્ય બિના કે ચિંતન મેં ચિંતન પર વજન રહેતા હૈ. ક્યા પરિસ્થિતિ નૈસર્ગિક રૂપ સે હૈ કે જિસકો સ્વરૂપ લક્ષ્ય નહીં હૈ વો ફિર ભી સ્વરૂપ કા ચિંતન કરતા હૈ બિના લક્ષ્ય કલ્પના બના કરકે, ઉસકા વજન ચિંતન પર રહેગા. ક્યોંકિ લક્ષ્ય મેં જો સ્વરૂપ આતા હૈ તો વજન સહેજ રૂપ સે, સ્વરૂપ મહાન હોને સે ઇસ પર વજન રહેગા. જિસકો લક્ષ્ય મેં સ્વરૂપ નહીં આયા હૈ ઉસકો તો પર્યાય બુદ્ધિ તો તીવ્ર હૈ, ઇસલિયે ઉસકા વજન તો ચિંતન પર રહેગા. ચિંતન કી મુખ્યતા રહેતી હૈ સો યથાર્થ નહીં હૈ. સ્વરૂપ લક્ષ્ય હોને પર ઇસકા ચિંતન સહજ ચલતા હૈ, સ્વરૂપ કા જો ચિંતન કે અભાવ સ્વરૂપ હૈ. જિસકા ચિંતન ચલતા હૈ વો ચિંતન કે અભાવ સ્વરૂપ હૈ. અતઃ ચિંતન કે કાલ મેં લક્ષ્ય કે પ્રતિ જોર રહેને સે આગે બઢના હોતા હૈ, ચિંતન કે કારણ સે નહીં. ચિંતન કે કાલ મેં લક્ષ્ય કે કારણ સે લક્ષ્ય કે પ્રતિ જોર રહેતા હૈ, રહેને સે આગે બઢના હોતા હૈ. અતે આગે બઢને મેં કેવલ ચિંતન કારણ નહીં હૈ, લેકિન લક્ષ્ય પૂર્વક જો જોર હૈ સ્વરૂપ પ્રતિ કા વહી કારણ હૈ. સ્પષ્ટીકરણ અચ્છા હૈ. ચિંતન પહેલે ચિંતન ચાહીએ, લેકિન જિસકા ચિંતન હૈ વો તો ચિંતન રહિત હૈ. જિસકા ચિંતન ચલના હૈ વો તો ચિંતન રહિત હૈ, ફિર ચિંતન પર તો ક્યો ઇતના જોર દેતે હૈ?
ये बात कहने में पहले चिंतन होना चाहिए. चिंतन पहले तो इसमें कर्तव्य का अधिकता है,
पता ही है.
धनी जो है चिंतन कर्तव्य,
चिंतन कर्तव्य पहले चिंतन तो करना चाहिए.
बात अभी है कि जितना पढ़ते हैं सुनते हैं उससे आठ गुना
ચિંતન હોના ચાહીએ. ચિંતન તો વજન મત રખતા, એ તો બાત હૈ કે જો તત્વ કા અભ્યાસ નહીં કરતા હૈ ઉસકો કહેંગે કે તું તત્વ અભ્યાસ કર. વો અભ્યાસ કરતા હૈ ઉસકો કહેંગે કે તું વો પઢને મેં ક્યો રુકતા હૈ, અંદર મેં ચલા જાય.
ચિંતન
મનન મેં જાય, ચિંતન મનન મેં આ ગયા ઉસકો વહાં ક્યો રુકતા હૈ, ચિંતન રહિત તત્વ હૈ ઉસકો દેખને. એસી બાત જ્યાં ખડા હૈ વહાં સે ઉઠા હૈ. है कुछ प्रश्न चिंतन में।
निश्चित करते हैं लेकिन इसका तो इसका चिंतन चलता है लेकिन इसका भी निषेध करते करते आगे बढ़ता है जो विचार करता है जिसका निषेध करते हैं उसमें दुख होता है खेद बढ़ता है खेद नहीं और निषेध नहीं
इसका भी निषेध करते करते मूल
ऐसा है
तो दुख है इसलिए इसका निषेध आता है दुख है इसलिए उसका निषेध आता है दुख नहीं होता तो निषेध क्यों करते
सुविचारण से ये फर्क है सुविचारण
में क्या है जो महत्व का मुद्दा है वो यथार्थता का है विकल्प का नहीं यथार्थता जो आई है इसके लिए उस स्टेज को उस स्थान में ठीक समझा जाता है फिर भी उस सुविचारणा जब है कि वहां अटकने का वहां भी अभिप्राय नहीं है तब ये सुविचारणा है विचारणा का जो खास बात है वो है कि वो हित अहित के विषय में वहाँ जो ज्ञान है उस एकदम तीक्ष्ण और सूक्ष्म तौर से काम करता है इसी को सो विचारणा कहें तो वहाँ ज्ञान की प्रधानता हुई न के विचारणा के विकल्प की मुख्य क्या बात है ऐसा है राग पर दृष्टि है वहां तक सभी वैचारिक परिस्थिति का केंद्र स्थान राग रहेगा कि सम्यक दर्शन के पहले तो सब राग ही राग है ऐसा नहीं सम्यक दर्शन के पहले के स्टेज में भी ज्ञान और दर्शन की मंदता की परिस्थिति है वो तो किस स्टेज में है किस तरह ठीक है किस तरह अनुकूल है आगे बढ़ने में वो देखने की राग जो है वो उस ज्ञान और स्वरूप रुचि के अनुकूल राग को चलना पड़ता है राग होते हुए ये राग की परिस्थिति ये हो गई है कि उनको ज्ञान और जो दर्शनों की मंदता हुई इन दोनों परिस्थिति को अनुकूल चलना पड़ता है और फिर भी उसकी मृत्यु निश्चित है इसलिए उसको उसको खत्म होना पड़ता है जैसे कोई मरीज है तो मृत्यु के समय पहुंचा तो आप उसको अच्छा अच्छा खिलाओ तो भी मरने वाला है नहीं खिलाओ तो भी मरने वाला है नहीं खिलाओ तो कमजोरी से मरने वाला है और खिलाओ तो हजम नहीं कर सकता इसलिए मरने वाला है तो जिसकी मृत्यु निश्चित होगी उसको खिलाना नहीं खिलाना दोनों मृत्यु को एक कारण ही होने वाला है ऐसे राग भी मरने वाला है फिर वो स्वरूप का रहा या कुछ भी रहा वो एक रहा लेकिन उसको जाना है निश्चित बात है इसलिए इसकी चिंता कम करने की जरूरत नहीं है इस विषय में उलझन में पड़ने की भी जरूरत नहीं है हम सद्भाग्यान को ठीक करते कि नहीं करते यही बात मुख्य तौर से देखने की है जैसे एक और प्रश्न दे रहे कि स्वरूप निश्चय के काल में स्वरूप की अनंत महिमा भाषित हुई तो स्वरूप की अनंत महिमा किसमें भाषित हुई कि ज्ञान में भाषित हुई ज्ञान में स्वरूप जितना मूल्यवान है, जितना महिमावंत है, उतनी महिमा ज्ञान में आएगी। और राग में क्या उस वक्त राग की क्या परिस्थिति हुई कि वो भी स्वर की महिमा करने लग गया। क्यों करने लग गया? कि ज्ञान का बल है, तो बलवान के पीछे निर्बल को भी घसीट ना हुआ, वो पीछे पीछे लंगड़ा था ज्ञान के पीछे चलता है और स्वरूप की महिमा करता है। स्वरूप तो राग बिना का है, जिसकी वो महिमा करता है राग, वो तो राग बिना का है। तो उसको तो वैसे ही वो टिक नहीं पाएगा। अगर स्वरूप की महिमा राग से ही होती मानो के, तो महिमा तो बढ़ती जाती है, तो राग बढ़ते जाना चाहिए था। क्योंकि महिमा बढ़ी इसलिए राग बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्वरूप की महिमा राग में नहीं बढ़ती है, ज्ञान में बढ़ती है, और ज्ञान में बढ़ती बढ़ती राग को खत्म करती है। लेकिन राग के जिसको दृष्टि है वो अकेला राग को देखता है कि स्वरूप की महिमा भी राग में आई, वो तो शुभ राग हो गया, इससे क्या फायदा, इससे क्या लाभ। अरे भाई ये बात नहीं है, ये तो राग बेचारा ज्ञान के पीछे स्वरूप का भजन करने लगा है, फिर भी स्वरूप तो उसको खत्म करने वाला है, इसलिए वो जिंदा नहीं रहने वाला। जैसे दुश्मन अनुकूल हो गया है, इसलिए क्या दुश्मन को जिंदा रखेंगे हम? नहीं, उसको विश्वास करने लायक होता ही नहीं, शत्रु को विश्वास करने लायक होता ही नहीं, वो तो निर्बल हो गया है इसलिए अनुकूल होता है। बलवान होता तो अपना तो मारने लगता, हमला तो हमारे पर कर लेता हूँ। निर्बल हो गया तो भाई साहब करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन दया करने लायक है नहीं वो, उसको तो खत्म करना है। अपना स्वरूप का विवेक करना, अपना हित का विवेक करना, शांत चित्त समय में क्या है के कोई उतावल में, कोई ऐसा विचार, उतावल में क्या होता है कि अच्छा डिसीजन हेल्दी नहीं आता है, जो निर्णय करना चाहिए, जो विचार करना चाहिए वो आकुलता में नहीं होता है, इसलिए निराकुल होकर के शांत होकर के विचार करो, तुम कौन हो, क्यों मनुष्य हुआ। जब आदमी बुद्धिमान है तो उतना विचार करेगा मैं मनुष्य हुआ, पर दूसरे बहुत से जीव है जो मनुष्य नहीं है, इनकी हालत बहुत खराब है, मैं क्यों मनुष्य हुआ, और ये दूसरे जीवों के हालत बहुत खराब है, इसलिए ऐसे हालत मेरे नहीं हो गए, क्योंकि ये पर्याय भी लिमिटेड टाइम की है, ये बात तो निश्चित है, नजर के सामने है, मेरे हालत खराब नहीं हुए और है इससे भी अच्छी हो गई, इसका मुझे विचार विवेक करना चाहिए, मुझे हित का विचार करना चाहिए, हित का विचार करना चाहिए, उसका नाम विवेक है। कृष्ण तो ये उठाया उन्होंने 15 साल की उम्र में, ये पद लिखते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र में ये प्रश्न उठाया कि मैं कौन हूं, मूल में कौन हूं और कैसे मनुष्य हुआ, दूसरे जीव मनुष्य नहीं हुए मैं कैसे मनुष्य हुआ, और वास्तव में मैं कौन हूं, जो मेरी गिनती होती है कि मैं फलना फलना हूं, क्या वास्तव में मैं ऐसा हूं, क्या वास्तव में कोई मेरा स्वरूप दूसरा है। इसका मुझे ऐसे विचार करना है, विवेक करना है। अगर मैं शांति से विचार विवेक करूंगा तो आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है वो मेरे समझ में आएगा। समझ में आएगा इसलिए अनुभव में आएगा ऐसा क्या तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत पर वो अनुभव अनुभव में आएगा। 15 साल की उम्र में
साथ साथ ये भी आया कि ये प्राप्त करने के लिए किसके वचन को रही है प्राप्त करवा वचन है कौन
सत्य के भगवान ऐसा ऐसा प्राप्ति निर्दोष सुख प्राप्त करने के लिए किसका वचन मान्य करना कि निर्दोष वचन मानते हैं जो पुरुष निर्दोष है जो आत्मा निर्दोष है वही प्रमाणिक माना जाता है उसके प्रमाणिक पर विश्वास करते
कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आभार मार्ग है राजमार्ग कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है राजमार्ग
आग्रह नहीं होता ना उत्पाद मार्ग का आग्रह होता है ना उत्सर्ग मार्ग का दिया है उत्सर्ग उत्पाद दिया है जो प्रवचन सारा विषय है ऐसा है तो मार्ग तो दो गुरु नहीं है मार्ग तो कटे दो कोई नहीं एक हर तीन काल में परमार्ग उसमें तो कोई दो बात नहीं फर्क क्या होता है तो कोई मार्ग में तेजी से चलते हैं कोई मार्ग में तेजी से नहीं चलते हैं रुकते रुकते चलते हैं उतना फर्क होता है लेकिन मार्ग दोनों का एक ही है मार्ग दो प्रकार के होते हैं एक ही प्रकार का मार्ग होता है स्पीड में फर्क होती है अब एक मार्ग
लोगों ने दूसरा रास्ता दिया है दूसरा रास्ता तय किया है अब वो देव गुरु साथ मंगल है खाली है हमें तो देव गुरु साथ का दासत्व चाहिए अब एक ही बात है सवाल जी मेरे कहे नहीं
क्या सोरानी जी ने भक्ति नहीं किया गुरुदेव का गुरुदेव की भक्ति कितना किया अपने पत्र में अच्छा आचार्यों के जो शास्त्र एकांत में पढ़ते हैं तो आनंद की बूंद बूंद से पड़ती है तो फिर उसमें आनंद की बूंद बूंद पड़ती है आगे नहीं है ठीक है ऐसा हुआ था कि हमारे रामगढ़ के जो मुख्य लोग थे उन्होंने करीब करीब सबको ये लग गया था दृष्टि के प्रकाश पढ़ते हुए कि ये निश्चय मेरा गुरुदेव के साथ एकांत का थोड़ा संपर्क रहा मैं कभी कभी गुरुदेव के पास एकांत में तत्व चर्चा के लिए जाता था तो एक वक्त क्या हुआ दृष्टि प्रकाश के प्रकाशन के बाद उन्होंने चला करके ये बात की तो देखिए यहाँ जो अभ्यासी लोग हैं उनको भी ऐसा लगा है कि न्याय भाई निश्चय आवासी थे क्या बोले वो कितना कॉन्फिडेंशियल ये बात है कि यहाँ के मुख्य लोगों की बात मुझे करते हैं हमने ये बात करीब 2025 के साल 23 के साल में हमने प्रकाशन किए एक आध साल की बात है मेरा प्रवेश है 2014 में ये 2024 मैंने मेरी उम्र करीब 30-31 साल की है میرے سے تو وہ کتنے کانفیڈینشیل بات وہ کرتے ہیں کہ یہاں کے جو مکھ مکھ ہو گئے ایسے لوگ ہیں وہ اس کو ایسا لگ گیا ہے کہ نیال بھائی جو ہے تو نشیا واسی تھے, لیکن دیکھیے نیال بھائی نشیا واسی نہیں تھے. تو سندھو بھائی کو بولے درد درش پرکاش لاؤ, ہمارے مشین درد درش پرکاش نکل رہا ہے. خود میں یہ آچاریہ کا گند گند والا کو نکال کے دیکھو, اگر یہ نشیا بھاشی ہوتے نا تو یہ بات نہیں آتی. دیکھو آچاریہ کی کتنی بھکتی ہے, شاستر کی کتنی بھکتی ہے. پھر دوسرا کام دو بات بتائیے کہ جس کو نشیا بھوس ہوتا ہے اس کو آنند نہیں آتا, کیا نشیا بھاشی کو آتمانند نہیں آتا؟ ہمیں تو آنند آ رہا ہے, لوگ کچھ بھی مانے, یہ دوسرا ثبوت ہے. تو اس کو آنند اندر کے نکل میں پرگٹ ہو گیا تھا, نشیا بھاشی تو ہوتا ہی نہیں کبھی. نرکل دشا میں جو آنند آتا ہے وہ نشیا بھاشی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ نشیا بھاشی نہیں چلا کر کے وہ بات کہی. مجھے کوئی شنکا تھی ایسی بات نہیں تھی, لیکن وہ وہاں والے کے ابھیپرائے کے خلاف ہے. وہ بات خود درشانا چاہتے تھے کہ میرا یہ ابھیپرائے الگ ہے, ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں. دوستوں ہم سب کو مزدور کی بھی بھکتی کی ہے.
یہاں تو داستی کی بات آئی ہے, دیو گرو شاستر کا داست چاہیے. گرودیو میرے لیے آنند کیرتن کر کے ادھک ہوں, داست بھاؤ نہیں آتا.
مجھے ویرا ناتھ ہے, ویرا ماس نہیں ہو, یہ بھی بڑھتی ہے.
ایسا نہیں, یہ سو گڑھ کی دوری کے لیے تو رہتا ہوں. کتنا گرو گیر جہاں براجمان ہے اس کی دوری میں ان کو تو پریہ لگتی ہے, دوسروں کو تو ہماری پریہ نہیں لگتی, ان کو تو دولی پریہ لگتی ہے. بھاؤ پھر بھی ہر ایک جانی کے ایک سے نہیں ہوتے, کبھی نہیں ہوتے. تو اس سے تو ہمیں دیکھنا نہیں ہے, بھیتر میں فرق دکھا دو. آپ سمجھ درشن جان چارتر میں کیا فرق تھا, وہ دکھا دو تم سے نکلتا ہو. جب تو ہم مانے کچھ کے کوئی مارگ میں فرق تھا, اور ایک بار میں تو فرق رہے گا. کسی کو بھکتی کا بھاؤ دیا جائے گا, کسی کو پوجا کا آئے گا, کسی کو ویاخیا کا آئے گا, کسی کو کوئی آئے گا. سر دیکھیے گرودیو سمے سال ساری سبھا میں پروچن دیتے تھے, اور شریمد جی نے اپنے مموکشوں کو سدھانت شاستر پڑھنے کے لیے آگے جلدی سے نہیں دیتے تھے. پہلے تم یہ پڑھو, پہلے تم یہ پڑھو, پہلے تم یہ اپاشت سے پڑھو, انیمت کے ساتھ پڑھو, تم یہ پڑھو بعد میں دشوئی یہ پڑھو. تو یہ انہیں خاص طور پر دیکھ کے ایسا نہیں, ایک راجمارگ. जीव को वर्तमान में दुख लगे तो प्रयास कर करके सुख को ढूंढ लेता है, लेकिन जो धारणा में ही संतुष्ट हो जाता है तो उसे दुख नहीं लगता, इसलिए इधर अंतर में ढूंढता ही नहीं। अच्छा, अब ये बात बहुत सुंदर आई है इधर कि मुमुक्षु जीव को वर्तमान में दुख होने पर भी दुख नहीं लगता, इसका कारण यह है कि उसे धारणा ज्ञान में ही संतोष मानता है, जिससे सुख के लिए प्रयास चालू नहीं होता है। देखिए कि जो भी मुमुक्षु है वो इस बात पर सहमत नहीं होते जल्दी कि विकल्प में दुख लगना चाहिए। मतलब क्या इसका, क्या और इसकी स्थिति कौन सी है वो इधर क्लियर करती है कि तुमको विकल्प में दुख नहीं लगता है, ये सूचित होता है कि जो भी तुम्हें ज्ञान की समझ की प्राप्ति है उसका संतोष हो गया है। कभी दुख नहीं लगता है, जहां असंतोष आना चाहिए वहां संतोष आ गया, यही विपर्यास हो गया। देवगुरु शास्त्र की भक्ति करता है, तत्वज्ञान का अभ्यास करता है, इसलिए इनका नाम मुमुक्षु है, लेकिन अगर उसको ऐसे करते हुए भी असंतोष होता तो ये मुमुक्षु सच्चा, अगर संतोष हुआ और उसमें दुख नहीं लगा तो नाम मात्र मुमुक्षु है, विपर्यास में खड़ा है। सीधी बात यहां से निकलती है, क्यों वर्तमान में दुख नहीं लगता है, दुख है फिर भी अवश्य धारणा ज्ञान में संतोष मिला है, जो भी प्राप्त समझ हुई उसमें संतोष हुआ है, ये बात अवश्य। ये बराबर पर्स को पकड़ लिए है, तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले को पर्स को पकड़िए कि तुम्हारा धक्कारा कितना चलता है, तो कौन सा रोग है, यहां से पकड़ लिया। जोरदार अंदर में तो कुछ दिखता नहीं और स्थिरता भी होती नहीं, इसलिए तत्व सुनने का भाव रहता है। क्या करे, करे भी क्या, उसको कहते हैं कि उसमें तो तुम्हारी व्यवहार श्रद्धा भी नहीं आई। क्या निश्चय श्रद्धा का तो सवाल नहीं, लेकिन व्यवहार श्रद्धा भी इसमें नहीं आई। व्यवहार श्रद्धा में से भी उसको निकाल करके ग्रहित मिथ्यात्व में रखा है। क्या पर तो सुनता है, उसको ग्रहित मिथ्यात्व में रखा है। इसमें तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं आई, सुनने का अभिप्राय ही नहीं होना चाहिए। क्या क्या सुनने का अभिप्राय नहीं, आपको स्थिति हो जाना है आगरा। सुनो कभी भाई को बुलाते हैं, सुनो सुनो, ये कहते कि सुनने का अभिप्राय नहीं होना, न सुनने का न सुनाने का। सुनने का राग होना और सुनने का अभिप्राय होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अब क्या कहते हैं देखो, सुनते ही इधर का प्रयास चालू हो जाना चाहिए, ये जो बात है ये बहुत ध्यान देने की बात
है।
विप्रय में सुनने की जो क्रिया है उसको साधन मान लिया, सुनना चाहिए सुनना चाहिए ऐसा अभिप्राय में उसको साधन मान लिया, एक गलत विचार दिया, साधन है ही नहीं, साधन की जरूरत है, राग आवे दूसरी बात है, अभिप्राय हो गए बिल्कुल दूसरी बात है। सुनते ही इधर का प्रयास चालू हो जाना चाहिए। अच्छा, जो सुनता नहीं है उसको तो प्रयास क्या चालू होना है, तो जो सुनता है उसको कहते हैं कि सुनते ही अंतर्मुखता का प्रयास चालू हो जाना। अब उस पर स्पष्टीकरण है कि तत्व श्रवण के संबंध में ऐसा अभिप्राय रह जाना कि श्रवण करते करते आत्मलाभ हो जाएगा, तो वह साधन विषयक बुद्धिपूर्वक की भूल है, जिससे जिसे सुनते सुनते ही प्रयास चालू होता है, ऐसे वर्तमान पात्र जीव को वैसी भूल नहीं होती। यद्यपि सुनने का राग छद्मस्थ अवस्था तक संभव है, तथापि यथार्थता में किसी भी राग का अभिप्राय नहीं होता। जिसको यथार्थ समझ है इसमें राग करने का अभिप्राय तो पहले से ही नहीं होता, जिसको वितराग होना है उसको राग करने का अभिप्राय नहीं होता। राग व राग के अभिप्राय में, राग होना और राग के अभिप्राय होने में दिन रात जितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है।
भूमिका अनुसार राग तो हुए बिना रहेगा नहीं, भूमिका अनुसार तो राग तो हुए बिना रहेगा
रहेगा,
और उसको अभिप्राय में आदत करें तो मिथ्या
तो वो भयंकर बोलोगी, बहुत बड़ी बोलोगी। जिसको वितराग होना है ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसको राग करने का अभिप्राय कैसे हो, तो वितरागता का अभिप्राय नहीं रहा। अभिप्राय तो परस्पर विरुद्ध नहीं रह सकते, राग और वितरागता रह सकते हैं साथ में, लेकिन इसका अभिप्राय नहीं रह सकता, ये फर्क है।
सुनने की जो बात है, चाहे वितराग अर्हन तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुने,
कुछ भी हो, दिव्य ध्वनि हो, ज्ञान की वाणी हो, शास्त्र हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, अभिप्राय नहीं हो, राग हो गया दूसरे।
राग और अभिप्राय को तपास करने में कोई साधन नहीं, ये राग है या ये अभिप्राय है, इसको चेक करने का कोई साधन?
हाँ, बड़ा साधन है कि जिसका अभिप्राय राग करने का नहीं है उसको राग का निषेध आएगा। जैसे आपका एक अभिप्राय है कि घर ऐसे चलना चाहिए, घर का एक भी सदस्य ऐसा है कि जो आपके अभिप्राय के अनुकूल नहीं चलता है, तो क्या होगा? निषेध आएगा। मैंने मेरा अभिप्राय बताया फिर भी वो ऐसा करता है, बिना रहेगा ही नहीं। अभिप्राय विरुद्ध परिस्थिति खड़ी होने से निषेध आएगा आएगा और आएगा ही, ये इसका चेक है, चेकिंग पॉइंट है। अगर निषेध नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अनुभवना है, राग आता है और निषेध नहीं आता है, इसका मतलब कि राग करने का उसका अभिप्राय है, तो अनुमोदन उसका हो गया, उसका राग का अनुमोदन है, तो राग का निषेध नहीं आएगा। आकर नहीं करने का अभिप्राय है तो निषेधा भी नहीं रहेगा। बहुत स्पष्ट बात है।
बात फैक्टर नहीं है ये बात, ऐसे लॉजिक से तो बहुत स्पष्ट लगता है, ऐसे आचरण में ये फैक्टर नहीं है।
खुद ही राग करने वाला खुद ही निषेध करे, अपना अभिप्राय अपने अभिप्राय के विरुद्ध राग चलता हो उसका निषेध, हर पार्टी बाहर कोई अपने इच्छा के विरुद्ध कोई प्रवृत्ति करे उसका तो निषेध होता है। यहाँ तो करने वाले भी खुद राग करने वाले खुद निषेध करने वाले भी हम।
क्या है कि राग करने का अभिप्राय नहीं है, उसको राग करना नहीं है, उससे हो जाता है, इसलिए इसका निषेध है। करने के अभिप्राय से करें उसको तो निषेध नहीं आएगा। प्रश्न ही है कि अभिप्राय राग करने का नहीं है उसको कैसे चेक करें, ये तो प्रश्न है। तो उसको तो राग होता है, नहीं करना है फिर भी होता है, अनिवार्य रूप से होता है, निवारण नहीं होता है, तो निषेध आना चाहिए। निषेध नहीं आता तो अनुमोदन तो वैसे बिना कहे हो गया, कहने की जरूरत नहीं है कि अनुमोदन करता है, बिना कहे उसका अनुमोदन है ही,
निषेध के अभाव में अनुमोदन
है ही, नियम से है।
ये सिद्धांत तो बिल्कुल अबाधित सिद्धांत है कि अभिप्राय में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो इसको सत्संग वगैरह में कैसे घटित हो सकता है, ये जैसे सत्संग में तो जो अभिप्राय से तो ऐसा रहता है कि सत्संग करे तो मेरा हित होगा, और अदरवाइज तो असत्संग है, सत्संग में आएंगे तो इसको राग लें या ये राग से अतिरिक्त एक भाव है।
सत्संग के हेतु से सत्संग करना है या कोई दूसरा कारण है इसके पीछे, या सत्संग का राग अच्छा है इसलिए वो सत्संग करना है, और दूसरे संसार का असत्संग का राग अच्छा नहीं है इसलिए सत्संग करना है, क्या कि हमारे श्रद्धा ज्ञान को ठीक करने के कारण से सत्संग करना है। सत्संग के पीछे क्या मकसद है
को ठीक करने के लिए?
हाँ, तो फिर इसके लिए हम तो हमारा श्रद्धा ज्ञान को ठीक करने के लिए प्रवृत्ति करते, उसमें ऐसा राग हो जाता है, इस कारण से वो राग हो जाता है, ऐसा राग करने के लिए राग नहीं कर रहे। ये बात चली पंचल मंदिर गए कि सत्पुरुष के प्रति अनुराग हुआ तो ये तो अच्छा माना जाता है मनुष्य के लिए, तो इसको तो अवश्य होना चाहिए, अगर नहीं हो गए तो ये अनुचित माना जाएगा। भूमिका के जिस भूमिका में जिस जो स्थान में जो राग आना चाहिए उस स्थान में नहीं आए तो उस भूमिका का त्याग हो जाएगा, मूर्खता ही नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये राग करना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं, ये हो जाता है।
चेक करने के लिए तो उस राग से मिलान कर देंगे, ऐसा राग होना उचित
ऐसा क्योंकि जिस राग पर दृष्टि है वो अकेला राग को देखता है, पर इनका सब छानबीन प्रश्न सब राग से ही चलता है। वास्तव में दूसरी परिस्थिति है कि उसका दर्शन मोहमद हुआ है, उसके ज्ञान में विवेक आया है, उसके ज्ञान में सत्पुरुष का मूल्यांकन हुआ है, ये दो मुख्य कारण से राग इसके पीछे चलता है। इन दोनों श्रद्धा और ज्ञान को राग अनुसरण करता है तो उस राग को ठीक माना, इसलिए ठीक माना कि वो श्रद्धा ज्ञान को अनुसरण करता है
उस राग,
लेकिन राग करने के लिए ठीक नहीं माना है। उसका ठीक स्थान क्यों बताया कि ऐसा नहीं होता तो उसका श्रद्धा ज्ञान के नाप आ जाते, तो उसका श्रद्धा ज्ञान ठीक नहीं है, सतपुरुष के प्रति उनको बहुमान नहीं आता है, राग भक्ति नहीं आती है, तो उसका श्रद्धा ज्ञान गड़बड़ी है, विपरीत है, मतलब तो श्रद्धा ज्ञान को दिखलाने के हेतु से राक्ष बताते हैं कि देखो इनको भक्ति है, सत्पुरुष के प्रति उसको भक्ति आती है। श्रद्धा ज्ञान को जो नहीं देखता है और राग को जो देखता है उसको राग से दिखलाते हैं। वास्तव में बात अंदर में जो दूसरी है उसको समझते हैं।
संग में तो जीव खड़ा है संग में तो जीव खड़ा है और किसका संग करने से मेरा श्रद्धा ज्ञान ठीक होगा, अगर ये विवेक नहीं है तो फिर बात तो खुलास हो गई। तो इसको राग के खाते में कैसे ले लें मैं?
ज्ञान की इतनी प्रधानता वहाँ है फिर भी उसको राग से क्यों देखते हो? क्यों कि आपकी दृष्टि राग पर है इसलिए आपको राग ही राग सब हर जगह नजर आता है।
नजर आने में तो नजर आने में
ऐसा ये बोला है इसी के अंदर
ये राग की नजरबंदी हो गई है ना, इसलिए हर जगह राग से देखने का विचार आता है।
431 में लिया है, संग करने का भाव आवे तब भी संग नहीं करना है, ऐसा भाव कायम मुख्य रखकर ही संग का भाव होना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण आपने यूं दिया, असंग ही हूँ ऐसी दृष्टि रखकर अथवा ऐसी दृष्टि करने हेतु सत्संग की भावना रहनी चाहिए।
सत्संग करने का अभिप्राय से सत्संग करना नहीं है, असंग होने के अभिप्राय से सत्संग
करना
यही बात है, इसलिए इसमें लिमिट रहेगी। देखिए भाई हमें सत्संग करना है लेकिन कुछ घंटों तक, जो सत्संग में हम जो बात सुनते हैं समझते हैं इसको फिर हम प्रयोग करेंगे इसका, वरना क्या होगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा घंटा सत्संग करो ये हो जाएगा, तो ये सत्संग करने का अभिप्राय हो गया। सत्संग करने का अभिप्राय नहीं है, असंग होने का अभिप्राय है, तो कुछ कुछ समय असंगता के लिए निकालना होगा।
तो जो परम सत्संग में दीर्घकाल तक रहता है तो जो बहुत दिन तक परम सत्संग में बिताता है उसका प्रयास तो चलता ही नहीं है, तभी वो अपना काम तो कर नहीं करता नहीं है। सत्संग से वो जो जिसको सीख लेके जो काम करना था वो तो काम किया नहीं, तो परम सत्संग में रहने के लिए के कारण वो ये मिथक से बच जाएगा क्या?
ऐसा कि पात्र जीव को ये बात ध्यान में है सत्संग करते हुए भी कि मेरा काम तो मुझे ही करना है, कोई सत्पुरुष देवगुरु शास्त्र मेरा काम कर देगा वो बात है ही नहीं, तो उसके ध्यान में है पहले से कि मेरा हित करना है वो मेरे पुरुषार्थ से ही मुझे करना है, मुझे पुरुषार्थ अंतर में कैसे करना वो बात समझने के लिए मैं थोड़ा सा संग करता हूँ। मेरा जो हेतु है उसे हेतु सफल करने के हिसाब से मैं थोड़ा सत्संग कर लू, मूल में सत्संग करने का हेतु है ही नहीं, तो उनको तो शुरू से ये पता है कि मेरा काम सत्पुरुष कर देगा वो बात वो मानता ही नहीं, उनका अभिप्राय में है ही नहीं, मेरा काम तो मुझे ही करना है मेरे से ही मेरा काम होगा ये बात पक्की समझ में है, फिर सत्संग का भाव आता है तो अपना हेतु को मुख्य करके वो बात समझेगा कि मुझे कैसे पुरुषार्थ करना है, किस तरह मेरे अंदर में जाना है अंतर्मुख होना है ये बात समझने के लिए उसका ज्ञान जो है वो तत्पर हो जाएगा, वरना वो बात वो और पास हो जाएगी, बात आएगी लेकिन वो पास हो जाएगी, उसके ध्यान में ये बात नहीं आएगी। प्रयोजनभूत बातें आती हैं जो सत्संग में, इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? इसलिए इस पर ध्यान नहीं जाता कि हमारा जो सत्संग करने का अभिप्राय है वो सही नहीं है, इसलिए जो अभिप्राय सही होता तो मूल बात पर उतना ध्यान जाता है। अच्छा अब देखिए कि अजमेर में जब आत्मधर्म मिला और जब उन्होंने ये बात पढ़ी कि एक ही आवश्यक है षट आवश्यक नहीं है, इसमें कौन सा संकेत मिल गया तो संघर्ष चले गया एक बात पर से वो सौंदर्यता तक जाने का परिश्रम क्यों किया? वो तो पहचानते नहीं थे कि वो आत्मज्ञानी है कि नहीं है, कभी मिले नहीं थे, कभी इनका साहित्य नहीं पढ़ा था। तो जिसकी प्रयोजन मेरा हित करना, ऐसी जो प्रयोजन की जिसकी दृष्टि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, उनको तो एक संकेत मिलते ही उसको पता चल जाता है कि बात कुछ इधर है। ये माइंस होती है ना, तो माइंस कैसे मिलती है? माइंस तो भीतर में होती है, जमीन के अंदर, तो वो कैसे मिल जाती है? कुछ चिन्ह मिलते हैं कहीं से कि इस तरह का पत्थर यहाँ का इधर क्यों? पत्थर तो कोई भी एक मिल जाता है, इस पर से पता चलता है कि भीतर में कुछ पड़ा है, तो कोई टुकड़ा ऊपर आया है, तो एक टुकड़ा मिल गया, सट आवश्यक नहीं है कि आवश्यक है। तो विकल्प से वो थक गए थे, विकल्प को शांत करने का रास्ता नहीं मिलता था। तो आवश्यक जो है, षट आवश्यक हो जिनागम का विषय, बिना जिनागम तो षट आवश्यक की बात ही कहीं नहीं है। तो ये तो जिनागम में पड़ी थी कि षट आवश्यक है, जब गुरुदेव की वाणी में यह है कि नहीं षट आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। अच्छा, ये छह वाली बात है विकल्प को बढ़ाती है, यही परेशान करती है। पर एक ही आवश्यक होता बात खत्म, बस यहाँ से पकड़ ली सारी बात। और दूसरे को खोल करके बतावे, ये तो खोल करके बात नहीं बताई, पर तो दूसरे को खोल करके बतावे और सालों तक बताते रहे, यही गुरु पासन हो जाता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि वो कितने गहरी बात बता रहे हैं, क्या कारण है इसका। इसलिए 439 वाला है ये, तो करीब 25 साल वो भी बहुत सम्मुख होने पड़ा है, और वो सुनने वाले ही है। क्या है सुनने वाले तो है ही, अपने यहाँ तो सुनने की मुख्य प्रवृत्ति चलती है, तो सुनने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। अगर सुनने का अभिप्राय है तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है, तो चोट तो लगनी चाहिए। जैसे कोई इधर थोड़ा मार दे तो कैसी चोट लगे, माथे पे थोड़ा मारे तो ऐसी चोट लगनी चाहिए, ऐसे तो बात है। तो हम तो व्यवहार श्रद्धा में से गए, तो निश्चय श्रद्धा तो चलो नहीं हुई है, तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं, और तत्व तो सुने उसमें नहीं, दूसरी बात तो क्या सुनने के नहीं है। सत्पुरुष से तत्व सुनना और उसमें गृह मिथ्यात्म हो गए, ये बात कैसे चोट लगनी चाहिए।
जहाँ नजर का परिणाम हो रहा है वहाँ आखिर की आखिर वस्तु पड़ी है,
नजर है वो भी कोई वस्तु पर, वस्तु के आधार पर खड़ी है, ये कोई अकेली पर्याय नहीं खड़ी है, जो देखने वाली पर्याय, जानने वाली पर्याय दूसरे को बात को, ये भी कोई वस्तु के पर्याय है, किस आधार पर खड़ी है, उस वस्तु को ढूंढो, देखो ऐसा करके उत्तर दिया। तो पर्याय पर से द्रव्य जाने की, द्रव्य पर जाने की बात हो गई, फिर चर्चा चली थी अंदर। एक अच्छी बात क्या आई है कि सुनते ही इधर का प्रयास चालू हो जाना चाहिए। तो सुनना होता है और प्रयास नहीं होता है, और जो ज्यादा सुनते उसको प्रयास मान लेते हैं, ये गड़बड़ हुई है।
इसलिए अभिप्राय सुनने का मतलब प्रयास दूसरी चीज है, सुनना दूसरी चीज है। प्रयास तो इधर का होना, मैंने अंतर्मुखता का होना चाहिए। श्रीमद जी ने एक बहुत सुंदर बात आई है। एक जगह उन्होंने पत्र लिखते लिखते में मेरा लिखने का भाव बद हो जाता है ऐसा करके एक स्पष्टीकरण दिया है कि जब मैं पत्र लिखूं और उसमें कोई अध्यात्म लिखूं तो उस लिखते वक्त मेरा उस भाव में मैंने जो जो मैं कहना चाहता हूँ उसी में मेरा रस होना चाहिए। अगर उसी में मेरा रस नहीं हो और मैं ये बात कहूँ या लिखूं कि मुझे कृत्रिमता लगती है, इसलिए अभी लिखने का छोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब ये लिखने का हो या बोलने का हो, कहने का हो, कहने वाले को उस भाव का भाव, जो बात वो कहते हैं उस भाव का आविर्भाव होना चाहिए, उसका रस आना चाहिए। उस विषय का रस नहीं हो गए और कहता जाए, ये तो एक प्रकार की कृत्रिमता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर दृष्टांत अपने आप से उन्होंने दिया है कि जो भी लिखने वाला हो या कहने वाला हो इस बात को, अगर उसमें उसका रस नहीं है तो ये कृत्रिमता में उसको ये प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। लास्ट टाइम वो
प्राप्ति बिना उपदेशक व्यक्ति जो होती है ये बात मिसिंग रहती है,
उसको तो यही रहेगा। और उपदेशक व्यक्ति से ही उपदेश होता है, अपराध बन जाता है। उन्होंने ये अपना दृष्टांत से वो बात कही, कहने के लिए नहीं कही, अपना दृष्टांत से वो बात कही। देखिए मैं तो अभी लिखना छोड़ दूंगा, मैं ये बात नहीं कहूंगा। तो अभी क्लास में वो बात चली थी, तो चंदू भाई ने एक तर्क उठाया था उस पर कि मुनि दशा की बात आवे ग्रंथ में, शास्त्र में का भजनामृत पढ़ते हैं, गुरुदेव का भजनामृत पढ़ते हैं, उसमें मुनि दशा की बात आती है, तो मुनि दशा के भाव आविर्भाव कैसे होंगे। तो ये श्रीमती का नाम लेकर कहा था कि ये कहते हैं तो बात सही है, ऐसा होना चाहिए वक्ता को या लेखक को दोनों को। उन्होंने तर्क लगाया उस पर कि मुनि दशा में तो हम है नहीं, मुनि दशा के भाव कहाँ से आविर्भाव होंगे, तो क्या मुनि इसका स्वाध्याय नहीं करें, छोड़ दे, कैसे करें, तर्क उठाया। मुनि दशा भी एक साधक दशा है, उसमें वितरागता है, तो वितरागता के प्रति रस आना चाहिए। मुनि दशा की महिमा तो जो मुनि दशा है उसका मूल्यांकन आके उसका रस आना चाहिए, इसकी भावना होनी चाहिए। जैसे समय दृष्टि है तो मुनि दशा की बात करते करते क्यों भावना में आते हैं, उस प्रकार का तो रस आना चाहिए। मुनि भाव नहीं हुए, जो मुनि को भाव होता है इसका भाव नहीं हुआ, लेकिन इसकी भावना नहीं हो सकती क्या, इस प्रकार का रस नहीं आता क्या। तर्क तो वैसे फेंक देते हैं, वो कितना आइडियल है वो बात है, मुझे ये दृष्टिकोण लेना है कि वो कितना आइडियल है कि जो भाव में हम नहीं आ रहे वो भाव की बात कैसे करें, वो कितना आइडियल है। Thank you.
परिणति में जो समाया हुआ रस है, परिणति में जो रस समाया हुआ है, वो उस तरह की वृत्ति में कहाँ रुकी है? उस समय उसका आविर्भाव हो परिणति के रस।
परिणति से उपयोग आता है और उपयोग से परिणति बनती है, तो उस सुसंगतता के लिए ये बात होनी चाहिए आपस में।
राशय
है
ऐसा नहीं है क्या? परिणति में जो स्वरूप की रस है उसका उपयोग में आविर्भाव हो।
हाँ, ऐसा होना चाहिए। मैंने परमार्थ के विषय में मेरा कोई विकल्प दूसरा चलता हो, कोई दूसरी दूसरी बात पर विकल्प चलता हो, और पारमार्थिक विषय में एक सूक्ष्म के आधार से पत्र लिख दूं, ये मैं नहीं चाहता। जब मैं पत्र लिखूं, मेरी पारमार्थिक वृत्ति सतेज हो जानी चाहिए, जब तो मेरा लिखना ठीक है। अगर उस परिस्थिति में ये पत्र नहीं लिखने का होता तो मैं लिखना छोड़ देता। तो उस जो दिन वो पत्र लिख रहे हैं, वो उस दिन कुछ ऐसी बात होगी, उन्होंने तो पत्र लिखना छोड़ दिया है, ऐसा करते तो प्रसंग ऐसा हुआ है।
कृत्रिम शब्द यूज किया,
फिर भी मैं लिखूं तो ये मेरे लिए कृत्रिमता है,
ऐसे
मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा मेरे से हो ही नहीं सकता, ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी बात, ऐसी कृतज्ञता मेरे से नहीं हो सकेगी। कितनी सहजता है, सहजता सरलता दोनों बात। बहुत से बातें मिलती है लिखा, ऐसे बहुत सी बातें मिलती है इनके जीवन में से।